আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العلي العظيم দুরূদ শরীফ পড়ি, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আসহাবি সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম। আসসালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। হামদ ও সালাত কে বাদ সবসে পহলে মেন আপ তমাম হযরাত কো দরগাহ আলি আশরাফিয়া মে উর্স এ খুতবে রাব্বানি মে হাজিরি পর মুবারকবাদ পেশ করতা হুম। ওয়াজিবুল ইহতিরাম صاحب سجادہ فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی، محبوب المشائخ حضرت ابو ذیشان سید محبوب اشرف اشرفی الجیلانی اور میرے برادران محترم اور اسٹیج پر موجود علماء اور ناتخواں حضرات اور اس پنڈال میں موجود تمام عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس مقدس ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، انہوں نے 72 سال اس دنیا میں گزارے اور 54 برس تک تبلیغ اسلام کے لیے سیاحت فرمائی۔ آپ نے اپنی روحانیت، نورانیت اور ریاضت کے ذریعے لوگوں کے قلوب اور اذہان کو پاک و صاف فرمایا۔ کم و بیش 4500 غیر مسلموں کو حلقہ بگوش اسلام کیا، اور نہ جانے کتنے ایسے لوگ تھے جن کو حقیقت میں صحیح معنی میں مسلمان کیا۔ بر صغیر پاک و ہند میں آپ نے اپنے وقت کے جید علماء سے علم دین حاصل کیا اور جامع مسجد فتح پوری کے دارالعلوم سے تکمیل درس نظامی کے بعد شیخ الحدیث پر تفسیر حضرت مفتی حبیب احمد علوی رحمۃ اللہ علیہ سے سند حدیث حاصل کی۔ ان کے علاوہ حضرت سید آل رسول مہر ربی رحمۃ اللہ علیہ के फर्जंद और बल्कि उनके पोते से कि पोते के खलीफा हजरत सैयद नज़ीरुद्दमा साहब मार रबी से भी सनद हदीस हासिल की। रूहानियत की के हुसूल के लिए आपने सिलसिला उवैसिया में हजरत अमीर अली शाह कम्बल पोश रहमतुल्लाह अलैह और फिर ताजदार अशरफियत मुजद्दिद सिलसिला अशरफिया हजरत अबू अहमद सैयद शाह अली हुसैन अशरफी अल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से इरादत फरमाई, उनके हाथ पर मुरीद हुए और फिर सिलसिला अशरफिया की खिलाफत हासिल की। इनके अलावा दीगर बुजुर्गान दीन और औलिया कामिलीन का फैज हासिल किया। हजरत पीर अब्दुल समद साहब, हजरत शाह तस्लीम अहमद साहब और दीगर बुजुर्गान दीन से आपने मुख्तलिफ सलासिल में खिलाफतें हासिल की और सबकी रूहानियत को लेकर फिर तबलीग इस्लाम के लिए निकले। अज़ीज़ाने गिरामी, इस सिलसिले की सबसे पहली तकरीर कलकत्ता में धर्मतल्ला के मैदान में आपकी हुई और आप वो एक पूरी तफसील है जिसको आप मानामा अशरफ में पढ़ सकते हैं। आप फरमाते हैं कि जब मैंने तकरीर शुरू की, यह ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौका था, जब मैंने तकरीर शुरू की तो मेरा मौजू शमाइल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न व जमाल का जिक्र करता था तो मुझे ऐसा लगा कि सामने सरकार तशरीफ़ फरमा है और मैं देखता जा रहा हूँ और लोगों से बयान करता जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या क्या बयान करता गया और बस मुझे नारे तकबीर और रिसालत की जो आवाज़ें थीं वो बुलंद होती हुई नज़र आती थी, सुनने में आती थी। और अल्लाह तबारक व ताला ने इस तकरीर के बाद आपको ऐसी तस्खीर अता फरमाई कि फिर हिंदुस्तान के तूल अर्द में आपके लिए बुलावे आए और आपने मुख्तलिफ मकामात पर पहुँच कर इस्लाम की तबलीग फरमाई और जहाँ पर गैर मुस्लिमों ने आपको तंग किया और जादूगरों ने आपके रास्ते में रुकावट डाली, वहाँ आपने दुआए हिज्बुल बहर और सूरह मुदम्मिल की बरकतों से लोगों को नवाजा और उनको शिकस्त फाश अता फरमाई। अज़ीज़ाने गिरामी, ये असल तबलीग दीन ये हमारे अहले सुन्नत के हिस्से में आई, जिन्होंने इश्क़ रसूल की शमें लोगों के दिलों में रोशन की, रसूलुल्लाह की मोहब्बत से लोगों के दिलों को सरशार कर दिया और बरसग़ीर पाक व हिंद के अंदर ऐसी शमें रोशन की कि अल्हम्दुलिल्लाह मतलब के हक अहले सुन्नत अपनी पूरी हक्कानियत के साथ बरसग़ीर पाक व हिंद में मौजूद है। आज जिस तरह ये स्टेज सजा हुआ है, उन्हीं मुकद्दस हस्तियों की औलादें आज हमारे स्टेज पर मौजूद हैं। अगर खानवादा अशरफिया के हजरत क़ुतब रब्बानी स्टेज पर मौजूद होते थे तो आज उनकी औलाद इस स्टेज पर नज़र आ रही है। अगर सदरुश्शरिया स्टेज पर मौजूद होते थे तो आज उनके नबीरा हमारे दरमियान मौजूद हैं। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी है। हमारा एक तशख़्ुस है, हमारी एक निशानी है और वो ये है कि उलमा यहाँ भी नज़र आते हैं, उलमा वहाँ भी नज़र आते हैं। समझते जाओ मैं क्या कह रहा हूँ। दारुलूम यहाँ भी नज़र आते हैं, दारुलूम उनके भी नज़र आते हैं। वहाँ पर भी दर्जा उला से लेकर दौरा हदीस तक तालीम दी जाती है, हमारे यहाँ भी दी जाती है। कहीं कहीं तो वहाँ का शेखुल हदीस स्पीकर पर पढ़ाता हुआ नज़र आता है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, वो कामयाब लोग नहीं हैं। अगर सिर्फ दर्स निज़ामी के पढ़ने से और पढ़ाने से कामयाबी हासिल होती तो थाना भवन कामयाब हो जाता, नदवतुल उलमा कामयाब हो जाता, देवबंद कामयाब हो जाता। कामयाबी रसूलुल्लाह की मोहब्बत और इश्क के साथ होती है। कामयाबी बारगाहे रिसालत और उनसे निस्बत रखने वाली चीज़ों के अदब में होती है। ये हमारा तशख्स है, यही हमारी निशानी है। वहाँ जब हदीस शरीफ की तालीम दी जाती है तो उन हदीसों में तफसीर के साथ और जनाब हदीसों की तशरीह के साथ उनका मुहद्दिस अपने तालिबे-इल्मों को बताता है कि देखो हुजूर के यहाँ इल्म गैब में ये हदीस जो है ये बता रही है कि उनको इल्म गैब नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। और हमारा मुहद्दिस जब पढ़ाता है तो वो सरापा अदब होकर एक एक हदीस और एक एक आयत से मेरे आका जाने कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दरिया बहाता है। और इस तरह से ताकि लोगों के कुलूब अधान बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुताल्लिक हो जाएं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारी निशानी थी और है। आप कहेंगे ये थी क्या लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? अफसोस की बात यह है कि वो जरासीम जो उनके थे वो आज कहीं कहीं अहले सुन्नत में नज़र आने लगे हैं। हमारे यहाँ अदब और एहतराम के साथ सरापा अदब होकर पढ़ाया भी जाता था, पढ़ा भी जाता था। एक दूसरे के लिए बर्दाश्त थी, इख्तलाफ को इल्मी इख्तलाफ तक रखा जाता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ अरसे पहले गैर मुस्लिम दुनिया की तरफ से मुसलमानों का लिबादा उड़ाकर कुछ ऐसे दाढ़ी मुंडे और कुछ दाढ़ी वाले हजरात इस्लाम का लिबादा उड़कर चैनलों पर कभी एंकरों की सूरत में और कभी मौलवी बनकर आए और अवाम के अंदर बेअदबी के जरासीम फैलाने शुरू कर दिए। उसमें एक बहुत बड़ा इस ज़माने का मशहूर फितना फितना इंजीनियर है, जिसके लिए हम सब के दिल की धड़कनें एक ही हैं कि वो बेअदब हैं और गुस्ताख हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन और अहले बैत अथार, ये दोनों हमारे सर के ताज हैं और इनकी मोहब्बत के अंदर हम बाल बराबर भी कमी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन वो नाजुक मकामात अहादीसे मुबारका के जो मुहद्दिसीन अपने शागिर्दों को बैठकर सुनाते थे, समझाते थे, उसके पस मंज़र को बयान करते थे, वो इन जैसे जाहिलों ने अपने चैनलों पे आकर वे बेअदबियाँ और गुस्ताखियाँ उन जाहिलों और अवाम के सामने बयान करनी शुरू कर दी और अवाम ने उससे नतीजा खस करके कभी अहले बैत और कभी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की शान में बेअदबियाँ करनी शुरू कर दी। और इस मामले के अंदर मैं समझता हूँ कि हम सब मुखालफतों के बावजूद वो अपने मिशन में वो शैतान कामयाब हुआ और उसने अहले सुन्नत के दरमियान नासबियत और राबजियत के जरासीम फैला दिए। ये इंतहाई अफसोसनाक मकाम है कि जिन चीज़ों का कभी सोचा भी नहीं गया था वो चीज़ें आज अहले सुन्नत के यहाँ नज़र आने लगीं। इमाम इश्क़ो मोहब्बत आला हजरत मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने इश्क़े मुस्तफ़ा की शमा को रोशन किया और पूरे बर्रे सगीर में उसको फैलाया, जिन्होंने सैयदों की ऐसी इज्जत की के मुहद्दिस होकर मजदूर बनकर उनको कंधा देने लगे। वो कभी बज़ाहिर बेअमल सैयद के लिए तादीमन खड़े हो गए, कभी नियाज का चावल जमीन पर गिर जाए तो मुहद्दिस बरेलवी झुककर जबान से उठाते हुए नजर आते हैं। ये सारी चीजें मसलक के हक अहले सुन्नत की निशानियां थीं और निशानियां हैं, लेकिन अफसोस का मकाम है कि जो इमाम इश्को मोहब्बत ये ऐलान करते रहे कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, उन्हीं इमाम अहले सुन्नत का नाम लेकर और अपने आप को बरेलवियत और रिजवियत का ठेकेदार बनाकर सैयदए कायनात की शान में बेअदबियां और गुस्ताखियां की जाने लगी। तुम्हारा आका जिनके बच्चों को नूर का कहें, उनकी वालदा को मादल्ला खता का लफ्ज इस्तेमाल किया जाने लगा। उनके लिए हम इस मामले में कोई बात करना नहीं चाहते, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ उस शख्स से जिसकी ज़बान से ये बेअदबी और गुस्ताखियाँ निकली और वो उन पर डटा हुआ है कि यही अल्फाज सिर्फ तुम अपनी माँ के लिए हमारे सामने कह दो, अपनी बेटी के लिए कह दो। अरे जो अल्फाज तुम अपनी बेटी के लिए कहते हुए शर्म महसूस करते हो तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम रसूलुल्लाह की बेटी के लिए ये बात कहते हो। ये कानून कि सिर्फ नबी मासूम हैं और हर किसी से हो सकती है, इसके लिए तुम्हें इन अल्फाजों को इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ सैयदए कायनात रह गई। अफसोस की बात है, कल ये लोग रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। हमें उनसे तौबा की कोई उम्मीद नहीं। जब रसूलुल्लाह उनको अपने मदीने से निकाल दें तो फिर हम क्या कह सकते हैं। बहरहाल मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं और वो ये है कि तमाम मुरीदीन और मुतकदीन सिलसिला अशरफिया खुसूसन और तमाम अवाम अहले सुन्नत से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर अपनी आकिबत को दुरुस्त रखना है और कल रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है तो खुदा के वास्ते ऐसे तमाम फितनों से बरात का ऐलान कर दें, उनसे दूर हो जाएं। कल हम रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। उनके शागिर्दों और मुरीदीन और मुतकदीन से भी मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपके पास भी अभी वक्त है, खुदा के वास्ते ऐसे तमाम फितनों का जो सहाबा के या सैयदए कायनात के शान में बेअदबी और गुस्ताखियाँ करने वाले हैं उनसे ऐलान बरात करें। ये रसूलुल्लाह का घराना है, ये रसूलुल्लाह का दरबार है। ये मत समझना कि वो रहमतुल्लिल आलमीन हैं, बेशक ये समझना कि वो रहमतुल्लिल आलमीन बेशक वो हैं, ईमान है हमारा, यकीन है, लेकिन उनकी बारगाह में या उनसे निस्बत रखने वाली चीज़ों से बेअदबी करने वालों के लिए एक जब्बार व कहार भी मौजूद है। इसलिए एहतियात का दामन हाथ से न जाने देना और ये सोचा करो हर बात में कि कल हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे। सैयदए कायनात कौन हैं जिनको रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरा खून है। अरे जिनको रसूलुल्लाह ये फरमाए, तुम उनके लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। और फिर हट धर्मी है कि उस पर कानून और जनाब उस पर तैयारी करके और ये साबित कर रहे हो कि हाँ हाँ माजल्ला, मैं अपने मुंह से वो अल्फाज निकालना पसंद नहीं करता। आज इन बातों में एक दूसरे की हिमायत में आजकल कुछ जाहिल उलमा का लिबास पहनकर अपने अपने चैनलों पे चीखों पुकार कर रहे हैं। उनको भी सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। आपस में एक दूसरे के अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए। हमारे उलमा में आपस में इख्तलाफात रहे लेकिन वो इल्मी इख्तलाफ थे और एक दूसरे के लिए एहसास बर्दाश्त। मेरे उस्ताद मोहतरम حضرت مفتی سید شجاعت علی قادری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں لاہور گیا، لاہور میں مفتی غلام سرور قادری نے مجھے ایک کتاب دی جو ابھی چھپی نہیں تھی، اور کہا کہ مفتی صاحب یہ میں نے کتاب لکھی ہے ڈاکٹر طاہر القادری کے خلاف، اور میں نے اس کی گرفت کی ہے، آپ ایک نظر دیکھ لیں اگر آپ کو اس پر کوئی اعتراض ہو یا کہیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا اور تقریباً آدھی کتاب کے صفحات پر پین پھیر دیا۔ انہوں نے کہا اچھا، آپ بھی اس کے حمایتی ہیں، میں تو آپ کو بہت سمجھدار سمجھتا تھا۔ اس وقت مفتی صاحب نے ایک جواب دیا، انہوں نے فرمایا مولانا آپ عالم ہیں، صرف علمی اختلاف کریں، ذاتیات پر نہ آئیں۔ ذاتیات کا اختلاف اور ذاتیات پر ایک دوسرے کو گالی دینا اور برا بھلا کہنا یہ اہل سنت اور علماء اہل سنت کا شیوا نہیں ہے۔ آپ اس کی گرفت کریں، علمی گرفت کریں، اور اس پر کتابیں چھاپیں، جو بھی کریں، لیکن علمی گرفت کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ عالم ہیں۔ یہاں پر ایک دوسرے کے لیے الفاظوں کا استعمال، اور اب آگے کیا کہیں، جب سیدہ کائنات ہی ان کے الفاظوں سے نہ بچ سکیں تو پھر ہم اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ مجھے ایک بات کا بڑا افسوس ہے، ہم کبھی اپنے اسٹیج پر اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ معاملہ اچھے انداز میں حل ہو، لیکن آج ہماری ماں پر بات آئی ہے، سیدہ کائنات پر بات آئی ہے۔ یہ اسٹیج سادات خانوادہ اشرفیہ کا اسٹیج ہے، اس لیے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس معاملے کو اہل سنت کے سنجیدہ علماء آگے بڑھ کر اس معاملے پر جو ہے وہ ایکشن لیں۔ یہ معاملہ اتنا بڑھ رہا ہے کہ اب کتنے سنی جو ہیں وہ ہمیں بے ادب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سیدہ کائنات وہ عظیم و شان ہستی ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو روئے زمین پر، میرے الفاظوں پر غور کرنا، روئے زمین پر نسبی لحاظ سے سیدہ کائنات سے افضل کوئی نہیں تھا۔ اگر کوئی ہے تو وہ نہیں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ نسبی لحاظ سے یہ فضیلت نہ تو صحابہ کرام میں کسی کو حاصل تھی، نہ یہ فضیلت امہات المومنین میں کسی کو حاصل تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کو بے فضیلت سمجھیں، یہ مطلب نہیں کہ ہم امہات المومنین کی شان میں اس بات کو بے ادبی قرار دیں، نہیں، وہ اپنی اپنی شان میں آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، ہم ان کی شان میں بھی بے ادبی برداشت نہیں کریں گے۔ یہ پنجتن پاک وہ عظیم ہستیاں ہیں، ان کے دنیا سے جانے کے وقت کی بات کرو تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں کل کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ۔ ان کے بعد سیدہ کائنات نے جب وصال فرمایا تو نسبی فضیلت کے لحاظ سے سب سے افضل اس وقت سیدہ کائنات تھی، کیونکہ رسول اللہ کا کوئی بیٹا اور بیٹی اس وقت حیات نہیں تھی۔ امام حسن نے جب شہادت پائی اس وقت روئے زمین پر نسبی لحاظ سے حضرت امام حسن کا کوئی ہم پلہ نہیں تھا، ان سے افضل کوئی نہیں تھا۔ جب امام حسین نے شہادت پائی اس وقت روئے زمین پر امام حسین سے افضل کوئی نہیں تھا۔ ارے اس گھرانے کی تم کیا بات کرتے ہو، ان پنجتن پاک کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ سنو، یہ وہ عظیم الشان ہستیاں ہیں، خدا کے واسطے ان کے لیے اپنی زبانوں کو لگام دو اور سوچو کہ تم کہاں جا رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو۔ یہ رسول اللہ کا دربار ہے، کل قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ آخر میں یہ بات افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے کسی سے کوئی पिंडी का हो या कहीं का हो, मुझे किसी की हमदर्दी की बात करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक बात पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अभी जो मौजूदा एक वाकया हुआ है जेलों में, इसके बाद लाहौर के एक शख्स ने ये ऐलान किया कि उस एंकर को दावत दी कि तुम इनको हनीफ कुरैशी को लेकर हमारे पास आओ, हम आपकी हर तरह खातिर तवादे करेंगे, हमारे साथ मुनाज़रा करो। मैं आप सबको पूरे कान और जहन को खुलवा कर पूछना चाहता हूँ कि मुनाज़रा किस बात पर हो रहा है। एक तैयारी कर रहा है कि सज्जदाए कायनात महफूज अनिल खता हैं, और दूसरा सुन्नी इस बात की तैयारी कर रहा है कि मादल्ला उनको खतावार साबित करना। हम लोग, ये हमारे लिए शर्म का मकाम है कि दोनों अपने आप को सुन्नियत के दावेदार कह रहे हैं। मुझे बताओ तो सही कि हम इस वक्त इस गिरावट से ज़्यादा कितना गिरेंगे, किस बात पे मुनाज़रे की क्या तैयारी हो रही है। ठीक है अगर इधर वाला जो भी है, लेकिन आप जो दावत दे रहे हैं, आप इस बात की दावत दे रहे हैं कि हम साबित करेंगे कि हमारे गुरु ने जो कुछ बकवास और बेअदबी की है वो सही की है, इस बात पर मुनाज़रा करेंगे। और किसके मुताल्लिक? रसूलुल्लाह की साहबजादी सैयदाए कायनात के लिए शर्म का मकाम है। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह मकालात सईदी के अंदर मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी अशरफी जामे नईमिया के मोहतमिम जो हैं, उनका वाकया नकल करते हैं कि एक मरतबा ट्रेन में एक देवबंदी मुनादिर और मुफ्ती साहब का सफ़र साथ हुआ। उन्होंने पूछा कि मौलाना आप मुनाज़रे की तैयारी करते हैं ना? उन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा आप सुन्नियों से मुनाज़रा करते हैं कभी इल्मे गैब पे, कभी रसूलुल्लाह के नूर व बशर पे, कभी रसूलुल्लाह की फजीलत के ऊपर, कभी हुजूर के मुतालिक आप भी रात को तैयारी करते हैं, हमारा मनाजिर भी तैयारी करता है, लेकिन हमारा मनाजिर कुरान और हदीस को इस तरह खोलता है और इसलिए खोलता है कि हुजूर का इल्म गैब साबित किया जाए, हुजूर की बेमिसलियत को साबित किया जाए, हुजूर की बेनदीरियत को साबित किया जाए, हुजूर की शान को साबित किया जाए। और आपके लिए शर्म का मकाम है कि आप सारी रात इस बात की तैयारी करते हैं कि किसी तरह ये साबित किया जाए कि उनमें मादल्ला ये कमी थी, ये कमी थी और ये कमी थी। वो शख्स जैसा भी था, मुफ्ती साहब फरमाते हैं मैंने उसके बाद उसको कभी मुनाज़रा करते हुए नहीं देखा। हम लोग बड़े खुश थे कि ये उन लोगों की बेअदबों की बातें हैं, देखो वो लोग ये कितने बेअदब हैं, देखो ये सब क्या कर रहे हैं, कैसी बातें करते हैं। अल्लामा हामिद सईद का आदमी दामत बरकातुम लालिया की एक तकरीर जो उन्होंने अमेरिका या लंदन में की, मैंने सुनी। उन्होंने कहा कि लोग आकर कहते हैं कि भाई ये लोग जो हैं सुन्नी जो हैं मदारों पे जाकर सजदे करते हैं, ये करते हैं और वो करते हैं। तो हमने कहा भाई सजदों को तो हम भी बुरा कहते हैं कि भाई गैरुल्लाह को सजदा हराम है, ऐसी कोई बात नहीं। वो कुछ जोहला हैं जो अपनी जिम्मेदारी पर ये काम करें, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। फिर उन्होंने एक नतीजा पेश किया और कहा कि हम सुन्नी अपने जाहिलों की वजह से बदनाम हैं और ये लोग अपने उलमा की वजह से बदनाम हैं, यानी इनके उलमा बेअदब हैं, बेअदबियाँ की इन्होंने कभी तकवियतुल ईमान में और कभी जनाब दूसरी किताबों के अंदर बदनाम ज़माना तहज़ीरुन नास वगैरह में। हम लोग ये कहते थे, लेकिन अफसोस कि आज हमारी सफ़ों के अंदर भी इस तरह के लोग आ गए। मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं, लेकिन मैं अवाम अहले सुन्नत को खान सिलसिला अशरफिया से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम फर्जंदों को ये बात कहना चाहता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है इस दरगाह अली अशरफिया से, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आप हजरात को इस जानी मुतवज्जे करता हूँ कि खुदा के वास्ते हमेशा कोशिश करना कि ना तो कभी सहाबा की बेअदबी बर्दाश्त करना और ना कभी सैयदाए कायनात और अहले बैत की बेअदबी बर्दाश्त करना। उन जलसों से उठ जाना, उन महफिलों से उठ जाना, तुमने देखा नहीं, आखिरी बात अर्थ करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। एक बहुत बड़ा मुदर्रिस था, बहुत बड़ा मुदर्रिस, फरिश्तों का उस्ताद था, मुअल्लिमुल मलकूत था, जन्नत में आता और जाता था, इतना बड़ा कि उसको अल्लाह ने फरिश्तों का उस्ताद बना दिया। अपने वक्त का कंदुल उलमा था और उसने वहां पर बहुत कुछ पढ़ाया होगा, उसके शागिर्दों में सारे फरिश्ते आते हैं, लेकिन हुक्म हुआ उस जुदुल आदम, आदम को सजदा करो, तादीमन सजदा था ना, इज्जत वाला सजदा था, एहतराम वाला सजदा था, और अल्लाह हुक्म दे रहा था उस जुदुल आदम, सारे शागिर्द सजदे में गिर गए। अल्लाह फरमाता है फसजदु, सब सजदे में चले गए, इल्ला इबलीस, एक सिवाय इबलीस के, एक रुक गया। ये पहला सबक था इस कायनात के लिए कि देखो कामयाब हो गए तो अदब की वजह से कामयाब हो गए, वरना बड़ा बड़ा बहुत बड़ा मुदर्रिस भी जो है वो गुमराह हो सकता है, बहुत बड़ा आबिद और जाहिद भी गुमराह हो सकता है अगर अदब ना हो। सारे शागिर्दों ने छोड़ दिया। मैं आज सारे शागिर्दों से कहता हूं खुदा के वास्ते तुम भी छोड़ दो, तुम भी छोड़ दो, क्योंकि अबावस्तक बरा, ये तकबुर जो है ये मान जाएगा। सारे शागिर्दों ने छोड़ा तो क्या मिला कि कोई सैयदुल मलाइका बन गया, किसी को जिब्रील कहा गया, किसी को मिकाइल कहा गया, किसी को इसराफील और इजराइल कहा गया। कामयाब हुए कि नहीं हुए? बेअदबों को छोड़ोगे और अदब करोगे तो कामयाब होगे और इज्जत भी पाओगे, मर्तबे भी पाओगे। इसीलिए मैं आज उन तमाम शागिर्दों से भी कहता हूं तुम भी छोड़ दो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि उसने कह दिया था कि मैं सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा और कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी आगे से, कभी पीछे से बहकाऊंगा। अब लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है, आज भी आप देखना चाहें तो लाहौर में मौजूद है, सिराते मुस्तकीम पर मौजूद, सिराते मुस्तकीम पर बैठा हुआ है। अब वो इदारा बन गया है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदायत के, ये आसमान हिदायत के तारों की तादीम करने की तौफीक अता फरमाए, हमें सैयदाए कायनात की तादीम करने की तौफीक अता फरमाए, और रसूलुल्लाह के घराने से इश्क और मोहब्बत पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। सैयद की इज्जत ना तो इल्म की वजह से होती है, ना ही अमल की वजह से होती है, उसकी इज्जत सिर्फ रसूलुल्लाह की वजह से होती है। वाखरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह।